श्यामली कुछ पल तक बिल्कुल चुप बैठी रही। उसके कानों में अभी भी मकान मालिक की बात गूंज रही थी, सुरेश और श्यामली का रिश्ता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अभी कुछ देर पहले ही वो एक ऐसे इंसान से टकरा कर आई थी जिससे उसका अतीत जुड़ा था, और अब यहाँ उसके सामने एक नया फैसला खड़ा कर दिया गया था। उसने धीरे से अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं, फिर उसने बिना समय गंवाए सिर उठाया। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन साफ थी। मैं शादी नहीं कर सकती। कमरे में जैसे एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें एक साथ श्यामली पर टिक गईं। उसकी माँ घबरा गईं। श्यामली? लेकिन श्यामली ने इस बार अपनी माँ की तरफ भी नहीं देखा। वो सीधे मकान मालिक और उसके भाई की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक ठहराव था। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, उसने साफ शब्दों में कहा। सुरेश के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में हल्की चुभन उभरी, जैसे उसकी ईगो को चोट लगी हो। मकान मालिक ने माहौल संभालने की कोशिश की। अरे बेटा, सोच समझ कर बोलो, ऐसा अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता। लेकिन इस बार श्यामली ने उनकी बात काट दी। रिश्ता अच्छा है या नहीं, ये मेरी जिंदगी है। उसकी आवाज़ अब थोड़ी सख्त हो चुकी थी। और मैंने कह दिया ना, मैं शादी नहीं कर सकती। बस इतना सुनना था कि सुरेश का धैर्य टूट गया। वो अचानक कुर्सी से खड़ा हो गया। उसकी कुर्सी पीछे घिसटते हुए तेज आवाज के साथ रुकी। क्या मतलब शादी नहीं कर सकती? उसकी आवाज में गुस्सा साफ छलक रहा था। कमरे का माहौल एकदम तनाव से भर गया। श्यामली के पिता तुरंत उठे। देखिए बात करने का तरीका। लेकिन सुरेश ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसकी नजरें सिर्फ श्यामली पर टिकी थीं। बहुत घमंड है ना तुम्हें, उसने तीखे लहजे में कहा। श्यामली ने बिना झिझके जवाब दिया। घमंड नहीं, फैसला है। ये सुनकर सुरेश का चेहरा और सख्त हो गया। वो दो कदम आगे बढ़ा। सुनो लड़की, उसकी आवाज़ अब खतरनाक हो चुकी थी, ये ना तुम अपने घर में बोल सकती हो, बाहर नहीं। कमरे में बैठे सब लोग सन रह गए। श्यामली की माँ घबरा कर बोली, अरे ये क्या तरीका है बात करने का? लेकिन सुरेश अब पूरी तरह अपना आपा खो चुका था। उसने उंगली उठाकर सीधे श्यामली की तरफ इशारा किया। शादी तो होकर रहेगी, समझी तुम? उसकी आवाज़ गूंज गई। या तो प्यार से, वो थोड़ा झुककर बोला, या फिर जैसे हमें ठीक लगे। ये सुनकर श्यामली के पिता का खून खौल उठा। बस बहुत हो गया, उन्होंने गुस्से में कहा, आप लोग अभी के अभी यहाँ से जाइए। मकान मालिक भी अब असहज हो गया था। अरे भाई साहब, आप तो बात को। लेकिन श्यामली के मौसाजी बीच में आ गए। बात आपने बिगाड़ी है, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। रिश्ता लेकर आए थे या धमकी देने? कमरे का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। सुरेश ने तिरछी नज़र से सबको देखा, फिर उसकी नज़र वापस श्यामली पर आकर टिक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। तुमने गलत फैसला लिया है, उसने धीमे लेकिन खतरनाक अंदाज में कहा, और इसका अंजाम तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा। श्यामली ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, उसने साफ जवाब दिया। कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें टकराती रहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सुरेश ने जोर से कुर्सी को धक्का दिया। चलो भैया, उसने गुस्से में कहा। मकान मालिक ने एक बार फिर माहौल संभालने की कोशिश की। देखिए आप लोग सोच लीजिए हम, लेकिन इस बार श्यामली के पिता ने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। दरवाजा उधर है। आवाज़ शांत थी लेकिन उसमें इज्जत की दीवार खड़ी थी। मकान मालिक का चेहरा उतर गया। उसने बिना कुछ कहे अपने भाई को इशारा किया। दोनों तेज कदमों से बाहर निकल गए। दरवाजा खुला और फिर धड़ाम। इस बार दरवाजा और जोर से बंद हुआ। कुछ सेकंड तक घर में बिल्कुल खामोशी रही, जैसे सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। श्यामली वहीं खड़ी रह गई। उसकी सांसें थोड़ी तेज चल रही थी लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसकी माँ धीरे से उसके पास आई। तूने ठीक किया या नहीं पता नहीं, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन डर लग रहा है बेटा। श्यामली ने उनकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की थकान उभरी। डर मुझे भी लग रहा है माँ, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं मजबूरी में अपनी जिंदगी नहीं दे सकती। उसके पिता चुपचाप उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता भी थी और गर्व भी। मौसी ने गहरी सांस ली। ये लोग सीधे नहीं लगते, मौसा जी ने सिर हिलाया। हाँ, और वो लड़का तो बिल्कुल ही गलत इरादे वाला लगा। श्यामली ने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा हो चुका था। गली में हल्की लाइट चल रही थी लेकिन उसके मन में अब दो तूफान चल रहे थे। एक तरफ विश्वनाथ, जिसकी बातें अभी भी उसके अंदर कहीं गूंज रही थी, और दूसरी तरफ सुरेश की वो धमकी, शादी तो होकर रहेगी। उसने अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था बल्कि एक फैसला था। कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता, उसने मन ही मन कहा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बाहर अंधेरे में खड़ा कोई शख्स उसके घर की तरफ देख रहा था और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। खेल अब शुरू हुआ है। उधर मकान मालिक और सुरेश तेज कदमों से अपने घर पहुंचे। दरवाजा बंद होते ही सुरेश ने झुंझलाकर अपने जूते एक तरफ फेंक दी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। देखा भैया आपने, उसने ऊंची आवाज में कहा। मकान मालिक ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। तुम भी जरा ज्यादा बोल गए सुरेश। लेकिन सुरेश उनकी बात सुनने के मूड में नहीं था। वो कमरे में इधर उधर टहलने लगा। ज्यादा? वो कड़वाहट से हंसा। वो लड़की मुझे सबके सामने मना कर दे और मैं चुप रहूं? उसकी आंखों में जिद साफ दिख रही थी। मुझे वो चाहिए भैया, सिर्फ वही। मकान मालिक ने उसे गौर से देखा। तुम उसे जानते भी कितना हो? सुरेश तुरंत रुक गया। उसने धीमे लेकिन भारी लहजे में कहा, जितना जरूरी है उतना जानता हूँ। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर वो थोड़ा शांत होकर बोला, पहली बार जब उसे देखा था ना, तभी समझ गया था।
उसकी आवाज अब गुस्से से ज्यादा दीवानगी में बदल रही थी। वो मेरी है। मकान मालिक थोड़ा असहज हो गए। ऐसी बातें ठीक नहीं होती सुरेश। लेकिन सुरेश ने उनकी तरफ सीधा देखते हुए कहा, मुझे उससे ही शादी करनी है। उसकी आवाज अब ठंडी थी लेकिन खतरनाक भी। मैं उसे भूल नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं। कमरे की हवा जैसे भारी हो गई। मकान मालिक समझ गए, ये अब सिर्फ जिद नहीं रही, ये कुछ और बन चुका था।